आचार्य चंद्र स्वामी की यह परम उपकारी रचना मानव घर क्षेत्र के जीवों के लिए पंचम काल के हृदय को भुला देने में समर्थ है। तो पंचम काल, लेकिन जो रचना हमारे सामने आ गई है, जो आचार्य कुंड स्वामी की वाणी हमें उपलब्ध हो गई है, मानो साक्षात चेतनकर परमात्मा की वाणी ही मिल गई हो। और क्या कहते होंगे सुमंडल भगवान। भगवान महावीर स्वामी का समावेश चरण जब लगा हुआ था तो वे महावीर भगवान क्या करते होंगे, बताते होंगे। और क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तुम अपने आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, इसके अलावा क्या कहते। आचार्य कुंड स्वामी की वाणी ये सच में हम जैसे जीवों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। यद्यपि उनके द्वारा किया गया यह कार्य उनके स्वयं के लिए बहुत नुकसान का काम रहा, घाटे का काम था। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है मुझे कि गुरुदेव जी यहाँ से ऊपर गए होंगे जीवन पूरा होने के बाद, कहाँ गए होंगे ऊपर पढ़ में, और कुंड स्वामी भी कर रहे होंगे। तो आप अपने ले सकते हैं कि गुरुदेव वहां जाकर के, क्योंकि जीवन भर 45 साल जो समय काल ग्रंथ उन्होंने चलाया, तो समय काल की इतनी आचार्य गुरु ऊपर से लगता होगा कि यार ये ऐसा महापुरुष हुआ जिसने मेरे द्वारा किए गए कार्य को सार्थक कर दिया। हमारे यदि कुंड स्वामी नहीं होते तो गुरुदेव किसका सोच करके बदलते, और गुरुदेव न होते तो कुंड स्वामी का परिचय जन जन को कैसे होता। दोनों तरफा है ना ये बात। तो मानो गुरुदेव के ऊपर आने का उनको भी इंतजार था, हो सकता है इंतजार। आचार्य कुंड स्वामी अपने अवधि ज्ञान से देख रहे हो तो पता लगता है उनको कि मेरी रचना को 2000 साल बाद इन्होंने बहुत विचार प्रसारित किया, और अवधि ज्ञान से देख करके ये भी पता लग सकता है कि 45-50 साल वाले आएंगे ऊपर ही मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, और गुरुदेव भी उनसे चर्चा कर रहे हैं, और आपस में चर्चा चल रही है तो आपस में पूछ ले रहे हैं दूसरे से हालचाल। तो मानो गुरुदेव ने कुंड स्वामी से पूछा कि क्यों साहब कैसी है, तो कुंड स्वामी का जवाब देते, अरे भैया तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो वहां भी चौथे में थे यहाँ भी चौथे में हो, हम तो बहुत नुकसान में है। उनकी क्या स्थिति है, बोले हमारे को हाल ही बेहाल है। क्या क्या कहेंगे बोलो कुंड स्वामी, वहां कहां झगड़े पाते नुकसान का प्रचुर पूरा संवेदन का भेजन करते थे। जब भरत क्षेत्र में थे अकेले आनंद का रफा स्वागत करते थे, तीन कचाई चौकड़ी का अभाव था, चरण चरण में अंतर्मुख होते थे, सिद्धों में योग होता था, अतिथि आनंद के झरने झरते थे, आनंद आता था हमारे को, और यहाँ कहाँ आ गए हम, अप्रत्यय ज्ञान भी उदयने हैं, प्रत्यय ज्ञान भी उदयने हैं, कचायों का सद्भाव है, और वो आनंद तो मानो बहुत गिरावट आ गई है, तुम्हारे बिजनेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन हमारे बिजनेस पर तो एकदम मानो बहुत बड़ा झटका लग गया है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है स्थिति, हम तो हमारी बात करें। कुंड स्वामी का उपकार और गुरुदेव का उपकार, दोनों का ही उपकार बुलाया नहीं जा सकता। एक एक दाता बहुत मार्मिक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये समय काल का मूल प्रतिपाद्य है, पूरे समय काल का। बातें बहुत आई है खुल करके, अलग अलग विषय सामने आए हैं, लेकिन एक बात जो मुख्य रूप से आई है वो है नास्ती सर्वों से संबंध, कोई संबंध नहीं है किसी का, और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्ता कर्माधिकार की छिहत्तर गाथाओं के अंदर वो बात आई और सर्व विशिष्ट के ज्ञान अधिकार कितना बड़ा सबसे बड़ा अधिकार है सर्व विशिष्ट ज्ञान अधिकार। लेकिन फिर भी आप विद्वानों के माध्यम से या चैनलों में सुनोगे की कर्ता कर्माधिकार सबसे बड़ा है। क्या मतलब इसका कहते हैं गाथाएं कर्ता कर्माधिकार में छिहत्तर है, सर्व विशिष्ट ज्ञान अधिकार में 108 गाथाएं है, तो बड़ा कौन सा है? अरे ये दो है ही नहीं, ये दो अधिकार ही नहीं है अलग अलग। वो कर्ता कर्म अधिकार से लिखा था, ये कर्ता कर्म अधिकार ही है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर ही चोट मारा है। उस कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट मारते हुए प्रारंभिक गाथाओं में क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कर दिया और आगे चलते हुए आगे गाथाएं शुरू हुई 321 से जो हमने शुरू किया था। मैं वापस दो मिनट में उस बात को दोहराता हूँ आपके सामने। ईश्वर कर्तृत्व मानने वाले और मैंने स्मृति को बचा लिया ऐसा मानने वाला आचार्य कुलगुरु कहते हैं मुझे दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसकी बात को सबको याद हो रही होगी, पिछले 4-5 प्रवचनों में मैंने खोला है इस बात को, सबका होगा ना, मतलब इतना आपको याद हो जाए कि सर्वविशिष्ट अधिकार की गाथाओं में क्या बात कही हुई है, तो हमारा ये विषय चलाना सार्थक हो गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है वो हमारे दिमाग में बैठ गया। 321 में क्या कहा था? जगत जन्म और कौन श्रमण, इन दोनों की बात सामने रख दी। और 322 नंबर गाथा में कह दिया कि हमें दोनों एक समान कर्ता दिखाई दे रहे हैं। 323 नंबर गाथा में कह दिया हमें दोनों ही निबोध के पात्र दिख रहे हैं, मोक्ष दोनों को नहीं दिखाई देगा। तीन गाथाएं होंगी, तीनों गाथाओं का ग्रुप है। आप सोचे यदि ग्रुप नहीं हो तो क्या होगा? इस ग्रुप की कितनी अहमियत है। यदि इन तीन गाथाओं का ग्रुप नहीं हो और सिर्फ एक ही गाथा कहें कि जगत जन तो विष्णु को कर्ता कर्ता मानते हैं और मुनिराज सहकाय के जीवों की रक्षा करने वाला मानते हैं, आगे वाली गाथा यदि नहीं पढ़ो और इस गाथा के ऊपर प्रवचन करे कोई बिना आगे पढ़े हुए तो क्या करेगा? बहुत अंतर है भाई साहब। कहां वो लोग मूलत लोग जो देखो सहकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, बोलो क्या लगेगा आपको? चार हाथ जमीन को करके चलते हैं, ईडिया प्रवृत्ति से चलते हैं, भाषा प्रवृत्ति से बोलते हैं, है भाई व्रता जी का पालन करते हैं, मुनिराज का जीवन कितना गजब होता है। ये कह रहे हैं क्या गजब होता है, सब पानी पानी है, सब बराबर है, कुछ नहीं है, खत्म कर दिया सब, जैसे वो रहते हैं, जैसे सप्त जन्मों में पारंगत रहते सप्त जन्मों से त्यागी, जैसे 5 पाप करने वाले वैसे 5 पाप से त्यागी, जैसे हिंसा झूठा के अंदर पारंगत लोग वैसे हिंसा का त्याग करने वाले, जैसे व्यापार करने वाले वैसे व्यापार छोड़ देने वाले, जैसे घर गृहस्थी में उलझे हुए वैसे घर गृहस्थी के त्यागी, सब एक समान है। सुनो सुनो, सबको एक समान मतलब अंदर एक्सरे करके देखना पड़ेगा। एक्सरे करने से क्या पता लगा? एक्सरे करने से पता लगा कि दोनों की मान्यता में कर्ता बुद्धि रही है, उन्हें एक समान और पहाड़ में आगे रखनी थी, ऊपर ऊपर में रख लगी हुई थी, अभी या अग्नि नोट और अग्नि नोट कैसे पहचानने में आएगा? तो लाइट क्या लगाया तुरंत पहचानने को हुआ। बच्चिया में तो मैं देखता नहीं कभी भी नोट ऐसी ले लेता हूँ, आज पता नहीं क्या गति और बच्चे रहता बैंक में जमा कराने जा रहा था, अभी धरने चल रहे हो, ऐसा ही माहौल चल रहा है। बोलो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, अभी जो मेरे को दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कोई अंतर नहीं है दोनों में, ये तीन गाथाएं हो गई। इसके बाद में दिया एक कलश और उस कलश ने इसी बात की सिद्धि की। क्या कहा? जब कोई संबंध नहीं है आत्मा और पर द्रव्यों में तो फिर कर्ता कर्म संबंध किस तरह से हो सकता है, फिर कोई मिथिला कर्ता कैसे हो सकता है? 200 नंबर का कलश याद आ गया आपको? 200 नंबर के कलश के अंदर क्या बात कही थी? नास्ती सर्वों के संबंध, किसी का किसी के मत में कोई संबंध नहीं है, फर्ज रमजान पर तप रहे हो, फर्ज रमजे और आत्मा का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और जब संबंध ही नहीं है तो कर्ता कर्म फना भी नहीं बनता है। आगे चलो, फिर चार बाताओं का ग्रुप दिया, अज्ञानी जी और ज्ञानी जीवों की चर्चा की। अज्ञानी जी ऐसा मानते हैं कि ये परद्रव्य मेरा है, ये गाँव मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये जमीन मेरा है, ये दुकानदारी मेरी है। अज्ञानी ऐसा मानते हैं, और ज्ञानी जी ये मानते हैं कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। इन चार भाषाओं के अंदर इस तरह की बात थी। फिर आगे चले, कला चाया 324 से 327 नंबर तक की भाषाओं के बाद कल किसी ना अपने भाषाओं की चर्चा। फिर मैंने तुम्हें तो कहा था कि तुम मोह से कह रहा है अपना वास्तव में दे रहे हैं, तो किस चीज को अपना कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ मोह के कारण, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यही सच्चाई है। फिर कहा जब दो द्रव्यों में संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ हे जगत के जीवो, हे मुनिराजो, तुम सदा ही आत्मा को अकर्ता देखो। 201 का क्या कहा? तुम जगत के जीवो, आत्मा को सदा ही अकर्ता देखो। फिर 202 नंबर का लक्ष्य, उसने क्या कहा? मैं कहा कि बहुत सही नियम था कि आत्मा करता है, और सरल की बात की, एक द्रव दूसरे द्रव्य का कर्ता करता नहीं, हमें अकर्ता देखने की बात कही। अब एक बार सुन लेना, विधायक देते नहीं मानोगे तो, कि जो वस्तु स्वरूप के सहज नियम को नहीं जानते हैं वे बेचारे भव सागर में डूबते हैं। मूल कलश में बात की, 202 नंबर कलश में, वे तो डूबे भव सागर में। अरे बेचारे वे तो डूबे भव सागर में, कौन डूब? जो लोग वस्तु स्वभाव के सहज नियम को नहीं जानते। तो फिर काम मान लू नहीं कि मैं करता नहीं, पक्का बोलो मैं अकर्ता मान लू अपने आप को? जहाँ अकर्ता मानो तुम अपने आप को, अकर्ता मानो। तो फिर जो मेरी मिथ्यात्वादी हो रहे हैं इनका कर्ता द्रव्य कर्म होगा, मिथ्यात्व होगा, दर्शन मोहनी कर्म होगा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर दो द्रव्यों के कर्ता वाली बात खड़ी हो जाएगी। तो कैसे मान रहा है कि तेरे नित्यात्व भाव का कर्ता दर्शन मोहनी कर्म हो गया? इस तरह के विषय उठाकर चार गाथाएं प्रस्तुत की, 328 से लेकर 331, जिनमें तीन चार बातें सामने आई। एक गाथा में ये कहा कि भाई यदि तू ऐसा मानता है कि जो मिथ्यात्म हो रहा है ना तेरे को, ये दर्शन मोहनी कर रहा है, यदि ऐसा मानेगा कि मेरा जो मिथ्यात्म हुआ है ये दर्शन मोहनी की वजह से हुआ है, ऐसा यदि मानूंगा तो मुझे गलत प्रकृति है दर्शन मोहनी की, वो भी मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या पद को प्राप्त हो, कर्ता पद को प्राप्त हो। समझ में आएगा? यदि ऐसा माना जाए, ध्यान से सुनना, चाहे किधर से आए ना सब, हाँ जुगल जी बाबू जी बार बार कहा करते थे ऐसा, प्रवचन सुनते सुनते यदि नींद आती हो क्या, और चाय पीनी पड़ती हो, और चाय पीने से नींद उड़ती हो, तो एक कप चाय का प्याला पी करके प्रवचन सुनने के लिए बैठना, ये सौदा भाटे का नहीं है? बराबर पी करके बैठना, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये मूल बात है नहीं, जिसमें जब्ती नहीं आती थी, यहाँ जब्ती आई और गया। बहुत मामला जो चल रहा है वो बहुत गंभीर चलता है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब दर्शन मोहनी कर्म का उदय और जीव हो गया मिथ्यात्मी, जीव जो मिथ्यात्मी हुआ ये दर्शन मोहनी ने इसको मिथ्यात्मी कर दिया। यदि ऐसा मानोगे तो दर्शन मोहनी कर्म को कर्ता मानना पड़ेगा, वो अचेतन कर्म प्रकृति से कर्ता बन का प्रबंध आ जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। आप ऐसा समझ लो अपनी पूरी की पूरी बात हो, आप उस अचेतन कर्म प्रकृति के हाथ में सौंप रहे हो, जड़ के हाथ में सौंप रहे हो, अनजान के हाथ में सौंप रहे हो। क्या आप तैयार है? नादान अनजान मूर्ख ना समझ जिसने ज्ञान नहीं है, पूरा का पूरा अपना बिजनेस हम उसके हाथ में देने के लिए, नहीं, मैं सब कोई तैयार नहीं। अपने अभी 5-5 साल के बच्चों के हाथ में नहीं चौंकते हैं कोई बिजनेस, ये मैं तो सब छोड़ रहा हूँ। तब ये कहते हैं भाई जी थोड़ा सा समझदार हो जाए, ये बिजनेस संभालने लग जाए, फिर हम थोड़ी सार करके देवदारी आकर के रहेंगे। कब? जब कोई संभालने वाला हो जाए। संभालने वाला कौन? समझदार। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि तू ना समझ कर्म प्रकृति को, अचेतन प्रकृति को कर्ता मानने को तैयार है क्या? फिर नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या करूँ? तो यदि कर्म नहीं करता है तो फिर जीव करता होगा, दो ही खाते हैं अपने पास। या तो अचेतन ने मेरे को नित्यादृष्टि किया, या फिर जीव करता है नित्यात्म का। अब यहाँ दूसरी बात कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अचेतन प्रकृति के कर्तापन का निषेध करने पर ऐसा मान ले कि जीव करता है, अब तो ठीक है, लेकिन किसका? उन कर्म प्रकृतियों का। ये आगे वाली बात है, 329 नंबर में कहूंगा। 328 नंबर में तो ये कही थी कि कर्म प्रकृति जीव के नित्यात्म को करती है। एक बात 328 में क्या बात, मैं पूछूंगा देखना, मैं जो तोड़े होने से पूछूंगा पहले, जैसे कोई सोते हुए दिख नहीं रहे मेरे को, इसलिए मेरी निगाह सब तरफ घूम रही है। कोई कोई सोता हुआ दिखे तो बताना, लगे भाई उसी से पूछना। हाँ हाँ, नहीं तो इसीलिए तो आपको कहा कि आप जाते रहो। देखो क्या कहा हमने, मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति, दो चीजें है कुल मिला के, दो तरह के मिथ्यात्व होते हैं। एक मिथ्यात्व होता है कर्म प्रकृति, और एक मिथ्यात्व होता है जीव का श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण की विशेषता। ये दो मिथ्यात्व हैं, और इन दोनों में से दोनों को एक दूसरे का करना मानना ये गलत फहमी है तुम्हारी। पहली 328 नंबर गाथा ने कहा कि वो कर्म प्रकृति ने तेरे को मिथ्यादृष्टि किया, तो वो करता होगी, ये गलत फहमी है, अचेतन को करता मानने का पसंद आएगा। 329 नंबर गाथा के अंदर ये कह रहे हैं कि जीव ने द्रव्य कर्म रूप मिथ्यात्म को, मानी कर्म प्रकृतियों को मिथ्यादृष्टि बना दिया है, मिथ्यात्म रूप परिणमित करा दिया ऐसा। तो कह रहे ये कैसे होगा? कुदरत द्रव्य मिथ्या दृष्टि होगा, मिथ्या तो वहां हुआ तो प्रॉब्लम वहां हो जाएगी। तो फिर क्या करें? जीव कुदरत के मिथ्यात्म को नहीं करता और कुदरत जीव के मिथ्यात्म को नहीं करता। तो तीसरी एक बार गाथा जी 330 देवा, उसने क्या कहा कि दोनों मिलकर के मिथ्यात्म दृष्टि करते होंगे। जीव और कर्म चले गए, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम हो जाएगा। चले इसमें एक और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बोले क्या कि दोनों को मिथ्यात्म का फल भोगना पड़ेगा। यदि अपराधी दोनों है, जीव और कुदरत, यदि इन दोनों ने मिलकर के मिथ्यादृष्टि का काम किया है, मिथ्यात्म किया है, मिथ्यात्म की कर्ता यदि ये दोनों है तो दोनों को फल भोगना होगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, फल तो जीव ही भोगता है, कुदरत तो फल भोगता नहीं है। इसलिए 331 नंबर गाथा में कह दिया कि भाई साहब इस मिथ्यात्म का कर्ता तुम अपने आप को ही स्वीकार करो। समझना अभी बस चार गाथाएं होंगे 331 तक। अब इसके बाद में कलट किया, उस कलट ने पूरे रहस्य को खोल दिया। कलट नंबर का 230, उस कलट ने क्या कह दिया, बहुत सुंदर पद्यानुवाद है 203 नंबर के कलश का। कोई अच्छे गाने वाले हो तो गा करके सुनाओ, बहुत बढ़िया है। बोलो
एक कार्य है सब जग जाने, रही अचेतन रहते के कर शक्ति चेतन भाव कर्म के, प्रकृति जीव दोनों ही मिल कर
तो
करें। इस कारण यह जीव कहा है उनका करता।
समझ में आया क्या? ध्यान से सुनाइए। अरे कार्य कर्ता के बिना नहीं हो सकता। कोई भी काम होगा तो कर्ता जरूर होगा। अब भाव कर्म ही एक काम है तो भाव कर्म का कर्ता कौन? अपने लास्ट में इस पॉइंट पर छोड़ा था थोड़ा सा ध्यान है। ये भाव कर्म का कर्ता कौन? भाव कर्म माने राग द्वेष आदि, राग द्वेष आदि का कर्ता कौन? अब इन्होंने कहा कि कौनगलिक प्रकृति तो सदा से अचेतन रही है, वो बेचारी क्या करेगी? कर्म प्रकृति अगर अचेतन है वो तो कुछ कर नहीं सकती। तो फिर जीव और प्रकृति दोनों मिलकर के करें तो समझते हैं दोनों को फल भोगना होगा। इसलिए हे मुनि राजो, हे लौकिक पुरुषों, हे जगत के जीवों, तुम इस बात को स्वीकार करो कि ये जीव ही रागादी भावों का करता है। क्या बात कह रहे हैं सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार में? अकर्ता 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 पंथी जब चर्चा चल रही थी इतनी, तो हमें तो ऐसे लगने लगा था कि आचार्य देव अभी तक तो पढ़ते अकर्ता पंथ की बात कर रहे हैं, कर्मों के अकर्ता पंथ की बात कर रहे हैं, अब राधा जी के अकर्ता पंथ की बात करेंगे और आगे स्टेप बढ़ा करके ये बात कहेंगे कि भगवान आत्मा पर को जानता भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं, सब पढ़ते छूटते जाओ छूटते जाओ, यहाँ तो बात कर ली। अभी तक अकर्ता अकर्ता कैसे कहते, अब यहाँ आचार्य कुंज कुंज स्वामी कह रहे हैं ये भगवान आत्मा करता है। क्या? लेकिन ध्यान रखना किसका? पर द्रव्य का नहीं, पर के भावों का नहीं, पर वस्तु का नहीं, परिवार का नहीं, बिजनेस का नहीं, जमीन जायदाद मकान दुकान का नहीं, किसका करता है? कि शरीर का, शरीर का भी नहीं, परिवार का नहीं, शरीर का भी नहीं, तो कर्मों का करता तो होगा? तथा नहीं, कर्म भी जड़ है तो कर्म का भी करता नहीं है, तो फिर मैं करता हूँ कि नहीं? तो अपने भाव कर्म का करता, तो अपने राजनीति का करता है। यदि तो अपने आप को राजनीति का करता भी नहीं मानेगा तो फिर ये संसार रचाई सिद्ध नहीं हो पाएगी। देखो भाई वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं, इसमें अभी जवान की बात नहीं कह रहे, निश्चय से करता है भगवान आत्मा राधा जी का। घबराना नहीं, मुझे पता है आज तक हम यही सुनते आए हैं रात को जड़ है, रात को कुंडल है, रात को कुंडल का होता है, रात को परद्रव्य है। हमारा बस चले तो रात वालों का पास में भेज दें, रात कही नहीं, राग होता का है, रात कही नहीं है। आत्मा में राग होता, आत्मा तो रात से भिन्न है, बिल्कुल आत्मा में राग है नहीं, तो रात का है? रात का अस्तित्व है या नहीं है? रात की सत्ता है या नहीं है? यदि आप राग का अस्तित्व और सत्ता मानते हो तो राग का अस्तित्व कौन सी जगह पर है? राग का अस्तित्व जीव में। मैं सहित बता रहा हूँ अभी आपको, दो बातें हैं, एक है वस्तु स्थिति और दूसरा है प्रयोजन। क्या वस्तु स्थिति यह है कि राग जीव की पर्याय नहीं है, वस्तु स्थिति यह है कि राग का कर्ता जीव ही है, ये परम सत्य है। राग का कर्ता पुद्गल नहीं है, राग पुद्गल में नहीं होता, ये परम सत्य है, बिल्कुल जीव ही करता है। बिल्कुल दिमाग में फर्स्ट स्टेप पर सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को बिठाना, फिर आगे जो मर्म बतलाएंगे वो मर्म समझना आएगा। अध्यात्म की बात उनके लिए शोभती है जिन्हें आगम के कंसेप्ट पहले क्लियर होते हैं। तेरे आगम का कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं हो और डायरेक्ट अध्यात्म की बात सुनो तो मुझे पता है, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में चेतन भाई मैंने लोगों से ऐसा सुना है, क्या बात कर रहे हो? रात रात कैसे हो जाएगा? रात तो कुछ नहीं होता, रात रात दिन का कैसे हो सकता है? कौन सी बात कहती है आपने? अभी उन्होंने कभी सुनी नहीं ये बात, रहने का सबसे पहले यही बात सुनो तुम। राग जीव का है, राग जीव की गलती से होता है, राग जीव में होता है, लेकिन अब लेकिन कहकर के वो प्रयोजन की बात कहेंगे। कौन सी? कि उसे अपना बांधने से तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यदि तू राग को अपना कहता रहेगा तो राग को छोड़ेगा कैसे? इसलिए तू राग को अपना कहने का त्याग कर, राग को गुंडल के खाते में डाल। क्यों? क्योंकि राग तेरे स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता, राग गुंडल के लक्ष्य से होता है। बस इसलिए गुंडल का कहा जाता है, समझ आ रही बात? राग को गुंडल का सिर्फ इसलिए कहते हैं कि राग जब भी उत्पन्न होगा, मोबाइल के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, टीवी के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, बीवी के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, बच्चों के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, परिवार के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, धन दौलत वैभव के लक्ष्य से, राग फिर राग किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ? कि ये जो चारित्र गुण की पर्याय थी, ये चारित्र गुण की पर्याय से बहिर्मुख होती है क्या, तो राग उत्पन्न होता है, और अंतरोन्मुख होती है तो विकरास्ता होती है। राग का जन्म अपने घर में हुआ, अपने घर में हुआ, लेकिन इसकी दृष्टि, इसका अपनापन, इसकी मान्यता ये उसके पास है, इसलिए वो उसका है। राग की पोजीशन मैं कहता हूँ कई बार, राग की बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन घर में उत्पन्न होने वाली पुत्रियों के समान है। ये कहाँ पैदा हुई है, लेकिन उनका स्वामी कौन है, बस ये समझ लो। नवीन भाई क्या कहा मैंने? ये जो राग पर्याय उत्पन्न हुई, ये राग पर्याय पैदा किसके घर में हुई? गुजरल के घर में कि जीव के घर में? राग पर्याय जीव के घर में पैदा होगी, इसकी संतान जीव की संतान है। तो फिर जीव इसका स्वामी है कि नहीं? जीव इसका कर्ता है कि नहीं? जीव इसका मालिक है कि नहीं? कि सुन, पैदा तो यहाँ हुई थी क्या, लेकिन यहाँ पैदा होते हुए भी इसने अपना स्वामी माना उसको क्या, तो इसने जिसको अपना स्वामी माना ये उसकी, ठीक है। जो जो बालिका है घर में, एक बालिका का पिता तो वही है, पिता तो वही रहेगा जीवन भर, ठीक है, लेकिन उसने अपना स्वामी किसको माना ये बताओ? उसने किसको अपना स्वामी माना? उसने वरमाला किसके गले में डाली? जिसके गले में वरमाला डाली वो उसका स्वामी, पति के गले में से पिता के गले में? क्या बात करते हो, तुम्हें इसी समझ नहीं है आपको? पति के गले में डालेगी तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि राग का पिता तो आत्मा और राग का पति कौन है? राग जिसके ऊपर लक्ष्य किया, राग जहाँ देख करके उत्पन्न हुआ, तो आचार्य कुमकुम स्वामी कहते हैं जगह जगह अध्यात्म में ये बात कहते हैं, कह रहे हैं उस राग को क्या अपना कहते हो, वो राग को खराया है। जो बेटी घर में पैदा हुई है, जन्म से ही माँ बाप इस बात को बराबर जानते हैं ये तो पराई, पैदा यहाँ हुई है, पड़ी बड़ी यहाँ है, मानते क्या है पढ़ाई, पर ये वक्त स्थिति है, उसका ज्ञान यहाँ कराया है भैया, राग का कर्ता तुम अपने आप को ही स्वीकार करो। ये कर्ता मन कहने वाली बात करें, यदि तुम अकर्ता मानोगे तो बहुत खतरनाक बात कही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये कहते हैं कि भगवान आत्मा तो अकर्ता है, राग का भी अकर्ता है। अब सुनो, राग के कर्ता और अकर्तापन के संदर्भ में भी त्यागवाद है, अनेकांत है, एंगल है। जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक अज्ञान दशा में रागाधिकता करता है, और ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी होने के बाद में राग का अकर्ता है। इसलिए बनारसी दास जी ने बहुत ढंग से की चोट में कह दिया, दो पंक्तियां जनजन को याद हो, सबके जवान पर है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म कुछ गल करे योनि के परमान। बोलो, ज्ञान भाव को ज्ञानी करता, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, राधा जी का करता है, मिथ्यात्वादी का करता है, अज्ञानी उसका करता है, और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। और बोले द्रव्य कर्मों का करता कौन है? बोले द्रव्य कर्मों का करता चेतन नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। द्रव्य कर्मों का कर्ता कौन? विपुलम। समझ में आई बात? अभी इतना जब हमने कहा कि द्रव्य कर्मों का कर्ता पुजगल है, बाहरी क्रियाकलापों का कर्ता सब तू नहीं है, तो इसलिए क्या समझ लिया कि भाव कर्मों का कर्ता भी मैं नहीं हूँ? क्या कहा? जब हमने इसको अकर्ता कर्ता कहा ना, ऊपर द्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, इसका कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं, कर्ता नहीं, जैसी बात कही, तो इसने क्या समझ लिया कि मैं भाव कर्मों का भी कर्ता नहीं था, मेरे हाथ में है क्या? सब कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म कर रहे हैं। तो आचार्य देव को लगा अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये गड़बड़ ऐसी हो रही है कि उसी समय आचार्य कुंड को दुनिया में ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो सांख्य दर्शन वाले थे। क्या कहा? दुनिया में एक संप्रदाय ऐसा है, आपने सुना कभी सांख्य दर्शन के बारे में? क्या ये सांख्य दर्शन वालों की चर्चा करने वाले हैं यहाँ? भाई साहब आप कहेंगे ये सांख्य दर्शन वालों की नित्या मान्यता तो हमारे भाई को बता रहे, हम लोग तो जैनी है यहाँ, हम लोग तो सब जैनी है, मतलब हम तो सब जैनी है यहाँ, तो जैनी बैठे हैं। तो आप हमारे भाई को सांख्य मछलियों की बात करके बतलाते हो, सांख्य मछली क्या मानते हैं? हमें क्या लेना देना, एकदम न्याय की बातें होंगी, भी शास्त्री में पढ़ना पढ़िए, तुम लोगों ने सब पढ़ाते हो पढ़ते हो, हमारे भी क्या लेना देना? सांख्य दर्शन वाले क्या मानते हैं और बौद्ध दर्शन वाले क्या मानते हैं? सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैया एक जैसे चार बात नहीं मान सक, ये लोग क्या क्या उन लोगों की मान्यताएं हैं? इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि गलत फहमी में तुम मान के तो बैठे हो मैं जैन हूँ, लेकिन एक्सरे करने पर पता लगे कि अरे ये तो अंदर के सांख्य वालों, गड़बड़ नहीं होगा। तेरे बाधाएं किसी है यहाँ? तेरे बाधाओं में ग्रुप है, तेरे बाधाएं दीर्घ लाइन से देखिए, 332 से लेकर और 344 तक इन गाधाओं की उत्थान का स्वरूप 204 नंबर का एक कलश दिया है आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने, जिसमें बहुत मार्मिक बात कही है इन गाधाओं की उत्थान का। में कितनी मार्मिक बात है आप देखो, मूल कलश 204 नंबर का कलश, चार गुण लिखे स्कंद है, हिंदी पढ़ लो, बोलिए हिंदी बोलिए, सब ध्यान से सुनिए या सुनो एक तरीके से, पहले मैं ये कलश बता देता हूँ, फिर जब सुनोगे ना तो आपको वो समझ में आएगा कि क्या बात कही जा रही है। सीधा सीधा बात सुनो, कोई व्यक्ति कर्ता मानता है कर्म को, भाव कर्म का कर्ता, क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया में ऐसे हो सकते तुम्हारे तो भाव क्यों है? क्या करूँ साहब, चारित्र मोहनी कर्म चुटे में ऐसे भाव होते? कोई व्यक्ति भाव कर्मों का कर्ता कर्म को माने और कहे आत्मा करता है, ध्यान देना भाव की लाभ हो जाने की नवलगुण भाव, क्या कह रहे हैं? कई लोग ऐसे दुनिया में वो ये कहते हैं भाव कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, कर्म के उदय से भाव कर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं? आत्मा के कर्तृत्व को सर्व का उड़ा देते हैं। लेकिन हमारी जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी तो कथनचित आत्मा को कर्ता कहती है और कथनचित अकर्ता कहती है। क्या बात है? उस जिनवाणी के विरोध में जिनवाणी को कोपित करते हैं, मानो क्रोधित करते हैं, माने जिनवाणी के विरोध में बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं, उन मोह से मोहित मत वाले अल्पज्ञों को संबोधन करने के लिए हेतु सहित त्यागवाद में जनवाणी को हे भव्य जनो वस्तु स्वरूप से अब आगे की गाथाओं में कुंड कुंडाचार्य समझाते हैं। ये मूल कलश देखो, अब कलश पढ़ते बोलिए।
त्यागवाद मैं जिनवाणी को कोपित करके उन्हीं मोह मोहित मति वाले अल्पज्ञों को
संबोधन करके दुख साधवाद में
آج کی گاتھاؤں میں کنڈ کنڈ
کتنا سرل شبدوں میں کہہ دیا ہے. آگے کی گاتھاؤں کے اندر آچاریہ کنڈ کنڈ دیو اس بات کو سدھ کرتے ہیں. کون کرتا ہے, کون کرتا ہے, اجانی جیو کیا مانتا ہے اور اجانی جیووں کی مانیتائیں کس پرکار کی ہے. ابھی دیکھو جی تو میں نے بتلا دیا آپ کو, یہ تو امرت چندراچاریہ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ آگے گاتھاؤں کے اندر خطرہ ہے, ساودھان رہنا. لیکن جب امرت چندر سوامی نہیں ہوتے اور ہم ڈائریکٹ گاتھاؤں کو پڑھ رہے ہوتے تو کیا لکھا ہے آدمی کی گاتھاؤں کے اندر, اس کی گاتھا پڑھتے جاؤں آپ کو ایسا لگتا ہے کیا بات کہہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کرم ابھیان کرے. آٹھ گاتھائیں پڑھیں گے اپن پھر 339 تک, کہاں سے 332 سے لے کر 339 تک آج گاتھائیں. آپ کو تو خوب ادھیان بات پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بھی تو نہیں ہے سب کے پاس میں. ہاں دیکھو کیا کہا ہے, دیکھو ایسا کہتے ہیں کرم ابھیان کرے اور کرم ہی جان کرے. گاتا بول رہا ہوں, میں گاتا کا پدیان واد بول رہا ہوں, بھاری میں اشارہ کیا گیا.
کرم ابھیان کرے اور کرم ہی جان کرے, جن کو سلاوے کرم ہی اور کرم ہی جاگرت کرے. کرم کرتے سکھی ایوم دکھی کرتے کرم ہی, مائ کر وہی کریں ار اتم جی کرم ہی جی برماتے ہیں اردو ادھ کے لوک میں, جو کچھ جگت میں شبھ اشبھ ہے کرم ہی کرتے ہیں. کرم کرتے کرم دیتے کرم ہرتے ہیں سدا, یہ سچ ہے تو سدھ ہوگے اکارک سب آسمان. نر وید ہے مہیلا بھلا کی نار چاہیے پرش کو, پرمپرا چاروں سے بات یہ سچ پورو ہے. ابرہم چاری نہیں کوئی ہمارے اپدیش میں, کیونکہ ایسا کہا ہے کہ کرم چاہے کرم کو, جو مارتا ہے انی کو یا مارا جاوے انی سے, پرواہ نام سے کرم کی پرکرتی کا یہ کام ہے. پرواہ کرتا نہیں کوئی ہمارے اپدیش میں, ایسا کہا ہے کہ کرم مارے کرم کو.
کیا کہا ہے بس یہ سر, یہ کتنی گاتھائیں پڑھی اپن نے؟ آٹھ گاتھائیں پڑھی. ان آٹھ گاتھاؤں نے کیا کہا ہے؟ ایک ایک گاتھا سر کسی گزار کی گاتھاؤں کو پڑھ رہے ہیں ابھی ہم, مان سمجھ رہے ہیں. دیکھو 332 نمبر نے کیا کہا, بھائی صاحب کرم ابھیان کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا, آپ لوگ ایسا مانتے کرم ابھیان کرتا ہے؟ آپ لوگ ایسا نہیں کہتے کیا کریں صاحب, بہت ہی تیور جانا بھائی کرم کا ہو, سمجھ میں نہیں آتی بات. بولو ہم کیا کریں, ہماری جو ابھیان کرتا ہے ہمارے کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ سمجھنے نہیں آنے کا مٹکا کس کے ماتھے بولتے ہیں ہم؟ جانا بھائی کرم کے ماتھے ہم کیا کریں؟ ایسا سمجھنے نہیں آ رہا ہے ہمارے, کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کرم ابھیان کرے اور جانی کیسے ہو جاتے ہیں؟ تم جانے ہو گئے تو کیا ہو گیا, تمہارے جانا بھائی کرم کا سہیوگ کیا ہے اور کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو مورت مت سمجھو, جانا بھائی کرم کے سہیوگ کے ہم سے زیادہ سمجھ میں آ رہے تو تمہارے کو لینا دینا کیا ہے اس میں؟ تو جانا بھائی کرم کے ادے سے ابھیانی اور جانا بھائی کرم کے سہیوگ کے ہم سے جانی, ایسا ہمیں لگتا ہے. یہ ماننے کا صحیح نہیں ہے, سمجھ میں آ گئی کیا بات؟ ابھی نیچے تو آگے کریں گے, ابھی تو اس لائن میں تو یہی کہا ہے, پھر آگے آپ کرم ہی اس جیو کو سلاتے ہیں. کس کس کو آ رہی ہے نیند؟ پوچھا ہم نے سدارے پنڈت جی سونا ہی ہوتا تو پھر یہاں سے وہاں سے بھاگ کے دوڑ کے آئے تو سننے کے لیے ہی تھے, لیکن کیا کریں निद्रा दर्शना वाली कर्म का तीव्र उदय आता है तो झपकी आ जाती है, सुनना तो भूख जाते। फिर जैसे आप जागृत करते हो हमें लगता है फिर ऐसे अवश्य हो जाते हैं, फिर लेकिन दो चार मिनट बाद में ऐसे लगने लगता है, धीरे 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 डाउन हो जाते। तो अब इतना हमारा क्या कसूर है? ये तो निद्रा दर्शना वाली कर्म के उदय का काम है। कौन सी जाता है कह रहे 332 नंबर, जीव को कर्म ही सुनाता है और जगाता कौन है? वो निद्रा दर्शना वाली कर्म का त्रैलोक्यम हो तो नींद नहीं आती, जग जाता है। मुझे पता है यहाँ सभा में बैठे हुए कई लोग ऐसे होंगे जो मोदी की घोषणा के बाद नींद नहीं आई होगी, तो अब उस समय तो नहीं आई, अब क्या करें? अब तो आएगी, आपके शरीर तो है। कर्म ही जागृत करता है, कर्म ही सुनाता है, कर्म ही जगाता है। इतना ही नहीं, आगे आगे गाथा 333 नंबर गाथा, उस गाथा में क्या कहते हैं? कर्म ही इस जीव को दुखी करता है और कर्म ही दुखी करता है। नहीं लगता है आपको ऐसा? ताता नहीं कर्म का उदय है तो सब सुख सुख को खाने सुनता है, आराम देखो सुनने का उदय होता है तो भाई साहब सब दुखी है। पाप का उदय आएगा तो पता लगेगा, बोलो। पाप के उदय से दुखी होता है और पुण्य के उदय से सुखी होता है। अभी ये सारी बातें पढ़ रहा हूँ मैं, इन सबको कह करके आप अपने अंदर में डकोने की कोशिश करना कि क्या हमारी मान्यताएं भी ऐसी ही है क्या? और यदि आपकी मान्यताएं भी ऐसी ही हो तो कुंड कुंड स्वामी जी कह रहे हैं कल से नाम के आगे जैन मत पढ़ना। आप गलती से जैन लगाने लगे हो, आपको पता नहीं है कुछ बदल गया होगा कुछ जन्म के समय हॉस्पिटल में, जरूर तो चक्कर हो गया होगा, गलती से जैनियों के घर में आ गए। तुम जैन नहीं, तुम्हारी मान्यता सांख्य मत मिल जाती है। कौन होते हैं सांख्य मत वाले? देखो लगता है कभी कभी ऐसा, आप सोचे ना अपने हृदय में जान करके, आपको नहीं लगता है पाप कर्म का उदय आ गया यार सब पकड़ के, भगवान क्या करे, अच्छा पाप कर्म का उदय आया, दुखी कर दिया। किसने? परमे दुखी किया, ऐसा मानने वाले को तो हम बाउंड्री के बाहर रखते हैं। लेकिन कर्म के उदय से दुखी हुए ऐसा मानने वाले हम यहाँ आकर के रहे। और पुण्य स्वामी ये कह रहे हैं कि तुम्हें बाउंड्री के अंदर एंट्री तो मिल गई लेकिन तुम हो बाउंड्री के बाहर वालों जैसे ही, दोनों एरिया से। वे अपना कर्ता धर्ता ईश्वर को मानते हैं और तुम अपने क्रियाकलाप का कर्ता धर्ता कर्म को मानते हो, अंतर कोई नहीं है दोनों में। देखो क्या कहा, काम करा रहे अपन, कर्म सुखी करते हैं, ताता लेकिन कर्म से उदय से जीव सुखी होता है और असाता का उदय आ जाए तो दुखी होता है। अरे घोषणा जी बने असाता का उदय आया है असाता का, क्या कहोगे आप? बहुत से लोगों के ताता का उदय आ गया, आइए ना देखो इससे भी आइए ताता का उदय सब आ गया, जहाँ जितना था रुका हुआ वो सब आ गया तो ताता के उदय से, और चला गया जो अपना वो सब असाता के उदय से। तो ताता का उदय आया तो चेहरा खिल गया, मजा आ गया, और असाता का उदय आया तो एकदम चेहरा मुरझा गया। तो चेहरा सुखी और दुखी होना ये साता और असाता कर्म के आदि है कि तेरा सुखी दुखी होना तेरे आदि है? वस्तु स्थिति तो ये थी कि तेरा सुखी दुखी होना तेरे आदि था और तूने मान लिया अपना सुखी दुखी होना कर्म के आदि, तेरी ये मान्यता कान के मतियों जैसे है। अभी समझ में नहीं आ रही होगी बात, इसलिए नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि आपको पता नहीं है काम के मतावल होगी क्या होते हैं कैसे होते। काम के नाम का एक दर्शन है, सुब्रमण्य के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में लिखी हुई चर्चा इस तरह की, क्योंकि और तो कहाँ पढ़ोगे आप लोग, वहाँ काम के लक्ष्यों के 25 तत्व कहे हैं। और वे 25 बताऊंगे हम तो सोले जोड़ ले रहा बताते रहो, नहीं घबराओ मत, 25 तत्व बतलाए हैं। उन 25 में से दो भागों में बांट दिया, 24 की तो करता है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष कहते हैं आत्मा को। वो आत्मा माने जो पुरुष है, वो पुरुष तो अकर्ता है, और जितने भी कर्ता क्रियाकलाप होते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। अब समझ आ रही है बात? काम के गर्जन वालों के यहाँ 25 तत्व मानते हैं। दो मिनट में बंद करता हूँ मैं, है ना चेतन भाई को सुनेंगे असल। देखो क्या कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं। तो अभी अपने प्रकृति और पुरुष तो अलग है जो जनाब में कहे गए हैं, लेकिन शब्द सेम है वहाँ भी। प्रकृति कही है उससे 24 तत्व, प्रकृति से बुद्धि महत अहंकार से 5 तन्मात्राएं ज्ञान इंद्रियां, वो सब उनके 24 तत्व कहे, वो अलग। और जो पुरुष है वो त्रिकोण शुद्ध है, इस तरह वो कुछ करता धरता नहीं है, बिल्कुल अकर्ता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग भी यदि ऐसा मानोगे कि ये कर्म प्रकृति ही करता है और पुरुष आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो तुम्हारी मान्यता सांख्यो ऐसी है। वो भी तो ऐसा ही मान रहे कि प्रकृति कर रही है और पुरुष। आपको पता है सांख्य मतावलंबियों की ग्रंथ है गीता। गीता जो है ये सांख्य मत के अनुसार है, और गीता में भी ऐसे अकर्तावाद की चर्चा है। वो अलग तरह का अकर्तावाद है, वो क्या है ऐसा श्लोक हमने पढ़ते थे गीता की हमारे कोर्स में, तो बहुत सुंदर श्लोक आया उसमें। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्व अहंकार मूलात्मा कर्ता इति मन्यते। संत समझ नहीं थी किसी को, ये सारे जगत में जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं ये सब तो प्रकृति के द्वारा करते किए हुए हैं, लेकिन अहंकार से मूल आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है। गीता कह रही है, गीता ये कह रही है कि तुम अपने आप को अकर्ता मानो। गीता उपदेश देते हुए उसको अर्जुन को ये कह रही है कि देख तू किसी को नहीं मानता है, सब प्रकृति का काम है, सब हो जाएगा, तू तो अकर्ता है, तू तो चला तू। ये मत सोच कि ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु है, ये तू तो चला तू, क्या विचार करके कि तू मारता ही नहीं है, ये तो काम तो प्रकृति का है, सब हो रहा है। अब वो खोल करके दिखा दिया उन्होंने, दिखा होगा आपने महाभारत में टीवी में है, अंदर सारे लोग मरे हुए दिखा दिए अर्जुन ने, जो उनकी फिलोसफी है। तो वो ये कहते हैं प्रकृति करती है और आत्मा करता है, और हम लोग भी यदि ऐसा मानते हैं कि प्रकृतियां कर रही है और आत्मा करता है, तो हमारी मान्यताएं काम से मती हो जाती है। इस तरह की बातें यहाँ कही है, मैंने जितनी बातें अभी पढ़ी है सबका अर्थ नहीं किया है और सबकी चर्चा नहीं की है। काम के व्याख्यान में इस काम से मतावलंबियों वाले प्रकरण को अपन पूरा कर देंगे, और अभी अपन लाभ लेते हैं चेतन भाई से। आना है सबको 6:30। हाँ क्योंकि 6:30 सोचते हैं ना, पंद्रह 6:40 तक आप आते हैं।
उसके बाद होगा अभिनय,